मुख्य अर्थ सर्वप्रथम अपन समझेंगे। उत्तम, जिसमें यानी जिस संयम में बहिरंग 10 परिग्रह और अंतरंग बहिरंग 10 परिग्रह और अंतरंग 14 परिग्रह, इन 24 में से अंतरंग परिग्रह जिसके नहीं है और बहिरंग परिग्रह भी जिसके नहीं है, उसको उत्तम कहना चाहिए। उत्तम क्या चीज है? बहिरंग 10 नहीं है और अंतरंग 14 नहीं है, उस संयम को उत्तम संयम कहना चाहिए। और संयम का तात्पर्य सम्यक प्रकारेण यम रूपेण ग्रह्यते यह असौ, सम्यक प्रकारेण यम रूपेण जीवन पर्यंतम आजीवन पर्यंतम ग्रह्यते यह असौ संयम, जो जीवन पर्यंत ग्रहण किया जाए उसको संयम कहते। लेते समय कैसे लेना, संयम को ग्रहण करते समय कैसे ग्रहण करना, एक दो साल के लिए हम 1-2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए मुनि व्रत धारण करते हैं और इसके बाद फिर देखेंगे क्या करना, ऐसा विचार करके यदि हम 10 साल तक मुनि बनते हैं तो उसको उत्तम की कोटि में रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? जीवन पर्यंत नहीं है वो, और जीवन पर्यंत ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो होता क्या है, फिर कषाय का अभाव नहीं कर सकते। बाहर के 10 परिग्रहों से हम दूर हो सकते हैं, हो जाएंगे, दिगंबर भी बन जाएंगे, समझ में आ रहा है? दिगंबर भी बन जाएंगे 10 परिग्रह छोड़ने से, द्रविलिंग तो प्रकट हो जाएगा लेकिन भावलिंग प्रकट होने वाला नहीं है। प्रश्न उठता है कि सभी परिग्रह छोड़ दिया है और 10 साल के लिए हमने संपूर्ण आशा को भी छोड़ दिया है, फिर भावलिंग प्रकट क्यों नहीं हुआ? आशा को भी छोड़ दिया है 10 साल के लिए, कषाय भी छोड़ दिया है और परिग्रह 10 प्रकार के छोड़ दिया है, तो 10 साल के लिए कषाय छोड़ने वाले उस साधक को उत्तम संयम प्रकट क्यों नहीं हुआ? जीवन पर्यंत नहीं किया है इसलिए नहीं हुआ, ये कहने में आता है। 10 साल तक आशा को छोड़ेंगे तो क्या बिगड़ता है? 10 साल के लिए हम आशा को भी छोड़ते हैं, कषाय को, अंतरंग 14 परिग्रह छोड़ देते हैं, इसके उपरांत पुनः हम ग्रहण कर लेंगे, नहीं भी ग्रहण करेंगे तो आजीवन तक भी हम कर सकते हैं, ऐसा कोई हमारा भरोसा नहीं। लेकिन 10 साल तो गारंटी। 10 साल तक हमने अंतरंग परिग्रह को त्यागा है तो भावलिंग प्रकट होने में दिक्कत क्या है? दीक्षा लेते समय ही हम ऐसा संकल्प कर रहे हैं, यम रूप से नहीं, नियम रूप से। 10 साल के लिए दीक्षा लेना ये नियम हुआ, संयम नहीं हुआ, ये नियम की कोटि में आता है। और आजीवन पर्यंत 24 परिग्रह को त्याग करना ये यम हुआ। यम आजीवन पर्यंत होता है और नियम काल मर्यादा से होता है। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, ऐसा। परंतु अपना जीवन कितना है? आयु खत्म होने तक, तो वहां पर कोई मर्यादा नहीं आती। जब तक मैं मनुष्य पर्याय में जीवित हूं, अंतिम क्षण तक, अंतिम श्वास तक मैं संयम का पालन करूंगा, ये संकल्प संयम कहलाता है। और काल मर्यादा से ले लिया तो नियम कहलाता है। इन महाव्रतों को नियम पूर्वक भी लिया जा सकता है और यम पूर्वक भी लिया जा सकता है, लेकिन नियम पूर्वक लेंगे तो उत्तम संयम हमारे जीवन में प्रकट होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यही प्रश्न है। 10 साल के लिए तो हमने कषाय भी छोड़ी है, बहिरंग परिग्रह को भी त्याग दिया है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है उत्तम संयम 10 साल के लिए? हाँ, तो 10 साल तक तो काबू रखा है ना, उतने समय तक तो उत्तम संयम होना चाहिए अपने पास, क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता, इसका उत्तर नहीं ढूंढ पाएंगे आप। इसलिए नहीं होता कि 11 साल तक मैं पालन करूंगा महाव्रतों को इस संकल्प के साथ, 11 साल के बाद मेरा कोई भरोसा नहीं, असंयम में भी जा सकता हूं, रागी भी बन सकता हूं, अंतरंग परिग्रह को भी धारण कर सकता हूं और बहिरंग परिग्रह को भी धारण कर सकता हूं, किंतु 10 साल के अंदर अंदर ये कुछ भी नहीं करूंगा। तो कुछ भी नहीं करूंगा इस संकल्प के साथ, कुछ करूंगा यह विकल्प भी साथ चल रहा है, यह राग है, यह राग है। इसलिए कैसा भी व्रत ले लो, वो नियम की कोटि में आते हैं तो उत्तम संयम संज्ञा को प्राप्त नहीं होते, और यम के रूप में होते हैं तो संयम के कोटि में आ जाते हैं। उत्तर समझ में आ गया? वो तो बहुत ऊंची बात हो गई, जरा रोकिए, हम नीचे की बात कर रहे हैं। उत्तम संयम यदि पाना चाहते हैं तो अंतरंग परिग्रह भी इस मनुष्य पर्याय की समाप्ति तक मैं छोड़ूंगा। जब तक मनुष्य आयु में जीवित रहूंगा तब तक ये अंतरंग परिग्रह भी त्याग हैं और बहिरंग परिग्रह भी त्याग हैं। हाँ, दोनों त्याग हैं तो उत्तम संयम आएगा। और कुछ पाबंदी ला दी आपने तो उत्तम संयम नहीं होगा, संयम का वह अभ्यास होगा। काल की मर्यादा के साथ जिस चीज को त्यागा जाता है वह संयम की कोटि में नहीं आता, संयम के अभ्यास की कोटि में आता है। उससे गुणस्थान नहीं बनता, उससे गुणस्थान की उत्पत्ति नहीं होती, गुणस्थान की ओर बढ़ने का अभ्यास अवश्य होता है। इतना फर्क है किसमें? नियम में और संयम में। नियम काल मर्यादा से होता है और यम आजीवन पर्यंत होता है। जैसे आपने एक साल के लिए छह रसों का त्याग कर दिया और पानी छानकर पीने का भी नियम ले लिया और दो प्रतिमा के जो लक्षण हैं उन लक्षणों को धारण करते हुए एक साल तक हम उसका दूसरी प्रतिमा का पालन करेंगे ऐसा संकल्प ले लिया, तो पंचम गुणस्थान हो गया क्या आपका? क्यों नहीं हुआ? अभ्यास कर रहे हैं और कब तक कर रहे हैं? एक साल तक। ये नियम की कोटि में आया कि यम की कोटि में आया? ये नियम की कोटि में आया, ये नियम की कोटि में आया। पंचम गुणस्थान में प्रवेश करते समय भी जो व्रत लिए जाते हैं, जो व्रत ग्रहण किए जाते हैं प्रतिमा आदि, ये जीवन पर्यंत के लिए ग्रहण किए जाते हैं क्या थोड़े दिन के लिए? दूसरी प्रतिमा का आपने संकल्प किया तो जीवन पर्यंत के लिए किया। ये अनुव्रत हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये छोटे व्रत कुछ काल के लिए होते हैं। अनुव्रत हो या महाव्रत हो, ये सभी व्रत आजीवन पर्यंत ही लिए जाते हैं। आप पूछ सकते हैं, हम प्रतिमाओं का पालन कुछ समय तक करेंगे और आप नियम दे दो। आपने ले लिया, हमने दे दिया, तो गुणस्थान नहीं बदला। कितने समय के लिए ले लिया? महाराज 10 साल के लिए पालन करेंगे दूसरी प्रतिमा। क्या हो जाएगा? चौथा गुणस्थान रहेगा क्या पंचम हो जाएगा? चौथा ही रहेगा। और चौथे गुणस्थान में कोई संयम होता नहीं है। चौथे गुणस्थान में 8 मूल गुण और 3 मकार त्याग और सम्यक दर्शन का पालन 25 दोषों से रहित होकर करते हैं। तीन ही चीजें हैं, मकार त्याग, 3 मकार त्याग, 5 स्थूल अनुव्रत और सम्यक दर्शन के 25 दोषों का त्याग। स्थूल पाप का त्याग, मद्य मका मांस मधु का त्याग, इसमें क्योंकि इसमें भी स्थूल हिंसा ही है, इसका त्याग और 25 दोषों से रहित सम्यक्तों का पालन, ये चौथा गुणस्थान हो गया। 8 मूल गुण का धारी होते हुए भी इसको एक देश संयमी नहीं कहा है, क्योंकि त्याग कुछ भी नहीं है, संतोष वृत्ति को धारण किया है। ब्रह्मचर्य व्रत में स्वदार संतोष व्रत किया है, लेकिन विशेष रूप से ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, कुशील का त्याग नहीं है, यहां अन्याय का त्याग है। पर में जाने का त्याग है, लेकिन स्व में प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रतिमाधारी को स्व में प्रमाण आ जाता है। नहीं जमान फोड़ फोड़। प्रतिमाधारी प्रतिमाधारी को प्रमाण आ जाता है। चौथे गुणस्थान में स्वदार संतोष व्रत को धारण किया था, यहां पर कुशील त्याग करता हुआ चला जाता। कुशील पाप को कम करते करते कम करते करते कुशील पाप को कम करते करते वह कुशील पाप को क्या हो गया, सब पॉइंट बिगाड़ करके रख दिया, असंयम आ गया उसमें। संयम मैंने पॉइंट टू पॉइंट, असंयम मैंने पॉइंट में गड़बड़ी। वह कुशील पाप का त्यागी प्रतिमाधारी बनने के बाद बनता है, और प्रतिमा लेता है तो उसमें 12 अनुवृत होते हैं, 5 अनुवृत, 3 गुणवृत और 4 शिक्षावृत। 5 अनुवृतों में वह परिग्रह को भी कम करता हुआ चला जाता है। 8 मूल गुण में परिग्रह का त्याग नहीं है, वहां पर मानसिक आशाओं पर बंधन लगाया है, आशाओं पर बंधन लगाया है, बंधन आने के उपरांत वहां संतोष वृत्ति आ गई। यह संतोष वृत्ति आने के बाद परिग्रह जितना था उतना ही है, इस परिग्रह में से और कम करने का नाम परिग्रह प्रमाण अनुवृत है। यह परिग्रह प्रमाण अनुवृत परिग्रह को कम करता 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 संपूर्ण परिग्रह 11वीं प्रतिमा तक कम करने लगता है, एक वस्त्र परिग्रह और पात्र परिग्रह को छोड़ करके, या केवल वस्त्र परिग्रह को छोड़कर बाकी सब त्याग कर देता है। इस तरह से प्रतिमाओं के माध्यम से परिग्रह को कम करता है, कुशील को कम करता करता कहाँ तक चला जाता है, पहली प्रतिमा से लेकर 7वीं प्रतिमा तक कुशील को त्याग करता हुआ जाता है। 7वीं प्रतिमा में आजीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत धारण करता है। 2री प्रतिमा में आजीवन करने का कोई नियम नहीं, और यदि करता है तो वो 7वीं प्रतिमाधारी नहीं हुआ। 7वीं प्रतिमा धारण करने से पहले बीच के सभी प्रतिमाओं को भी धारण करना पड़ेगा, उनके जितने नियम हैं उन सबको पालन करता हुआ 7वीं प्रतिमा में चला जाता है, तो आजीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का धारण 7वीं प्रतिमा में होता है। कोई कोई श्रावक ऐसा भी करता है, सबसे पहले सबसे बड़ा पाप जो दिखता है कुशील पाप, उसको आजीवन पर्यंत त्याग देता है, तो ये कोई गलत नहीं है। वह चौथे गुण स्थान में रह करके भी कर सकता है, और द्वितीय दूसरे गुण स्थान में भी रह करके कर सकता है, किंतु यह नियम है 7वीं प्रतिमा धारण करने के बाद वह किसी के शादी आदि में भाग भी नहीं लेता। 7वीं प्रतिमा धारण करने के बाद और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के यदि चौथे गुण स्थान में है, तो यदि पहली प्रतिमाधारी दूसरी प्रतिमाधारी है तो वह शादी आदि में जा सकता है, आ सकता है। देखो कैसी व्यवस्था है ये, ब्रह्मचर्य व्रत को आजीवन नीचे भी ले सकता है, ऊपर भी ले सकता है। ऊपर का ले लेगा तो वहां पर सभी कट हो जाता है, क्या क्या, जीवन पर्यंत तो आजीवन ब्रह्मचर्य, और किसी के शादी का ठहराव भी नहीं करना, ठरसो दिल्ला यार्द भी ठहराव भी नहीं करना, और जो ठहराव करते रहते हैं वहां पर बैठना भी नहीं, अनुमोदना भी नहीं देना, कृतकारित अनुमोदना से दूर रहना पड़ता है सातवीं प्रतिमा में। नीचे ऐसा कोई नियम नहीं है, सातवीं प्रतिमा में ही यह नियम है। अब यह आजीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया तो एक पाप का त्याग हुआ, पंच पापों में एक पाप का त्याग हुआ। अभी पाप कितने बचे हैं? अभी चार बचे हैं। तो चारों पापों को आंशिक रूप से कम करता है, त्यागता है, तो उसको पंचम गुणस्थान की प्राप्ति होती है और वह वस्तुतः प्रतिमाधारी कहलाता है। किंतु ये एक देश पंच पापों का त्याग भी जीवन पर्यंत होना चाहिए या कुछ समय के लिए होना चाहिए? यदि कुछ समय के लिए किया है तो वह प्रतिमा का अभ्यास कर रहा है, ये कहलाएगा। और जीवन पर्यंत किया है तो प्रतिमा का वह अभ्यास नहीं कर रहा है, प्रतिमाधारी बन गया है, ये कहना चाहिए। तो संयम धारण करने के दो रास्ते हैं, एक नियम रूप है और एक संयम रूप है। हम पंचम गुणस्थान में जाना चाहते हैं तो नियम रूप में करना पड़ेगा कि यम रूप में? हाँ, ये ध्यान में रखो, यदि आप अभ्यास कर रहे हैं तो एकाध साल का नियम ले लिया, महाराज हम दो प्रतिमा का पालन एक साल करके देखते हैं, एक साल के लिए नियम दे दो, ऐसा भी दिया जाता है। दो प्रतिमा के पालन के लिए नियम व्रत दिया जाता है, और ऐसा दे दिया तो क्या गुणस्थान बदल गया? नहीं, अभ्यास के काल में गुणस्थान परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? तो एक दो साल तक आपने पालन किया और इसके उपरांत आप लौट करके वहीं आने वाले हैं, वहीं पर लौट आने का, असंयम में ही लौट आने का, जिसको विकल्प साथ ही चल रहा है, उस विकल्प के साथ पंचम गुणस्थान की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए आजीवन करने के लिए बताया है। ब्रह्मचर्य व्रत कितना ले रहे हैं? तो इतना ले रहे हैं, तो आजीवन लेना ये पंचम गुणस्थान है। कितना ले रहे हैं? इतना ही ले रहे हैं। कितने समय तक? इतने समय तक, तो पंचम गुणस्थान नहीं है। कुशील पाप को कैसे त्याग कर रहे हैं? संपूर्ण त्याग कर रहे हैं, संपूर्ण, लेकिन कितने समय तक? कितने समय तक? तो कहा एक साल, तो भी पंचम गुणस्थान नहीं है। आप थोड़ा त्याग करो या पूर्ण त्याग करो, कितने समय तक क्या त्याग करना चाहिए? आजीवन पर्यंत ही त्याग करना चाहिए। जो आजीवन पर्यंत त्याग किया जाता है उसमें संयम आता है। और श्रावक की जितनी भी प्रतिमाएं हैं पंच पापों को एक देश कम करने के लिए हैं, पंच पाप छूटते नहीं, सर्वथा छूटते नहीं। क्या छूटते हैं? नहीं, ग्यारहवीं प्रतिमा तक भी चले जाएं तो भी परिग्रह छूटता नहीं है, परिग्रह पाप रहता ही है। और एक परिग्रह पाप है तो शेष पांच पाप भी, चार पाप भी वहां रहते ही हैं। संयम से विशुद्धि बढ़ती है, संयम से विकल्प कम होते हैं। जो पाप के विकल्प बार बार आते हैं, पंच पापों के विकल्प आते हैं, अशुभ विकल्प, परिग्रह में मन बार बार दौड़ता है, तो वो कम होता है, विशुद्धि बढ़ती है इसलिए कम होता। विशुद्धि कैसे बढ़ाएं? तो पहले त्याग का संकल्प ले, फिर विशुद्धि बढ़ाएं। हाँ? हाँ बिल्कुल ठीक है, पंचम गुणस्थान में संयम नहीं है, एक देश संयम है, एक देश संयम। हाँ? छठे गुणस्थान में जाने पर होगा? कब होगा? यानी छठे गुणस्थान में जाने पर ही होगा, पंचम गुणस्थान में रहेंगे तो एक देश संयमी रहेंगे, चौथे गुणस्थान में रहेंगे तो असंयमी रहेंगे, चौथे से भी नीचे रहेंगे तो असंयमी ही रहेंगे। वो तो उत्तम संयम किस गुणस्थान में प्रकट होगा? छठे गुणस्थान में ही उत्तम संयम प्रकट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं किया। संयम लेने की भावना भाई, संस्कार आ गए, यानी छठे गुणस्थान में जाने के लिए आपने अपनी भावनाओं को तैयार किया, अपनी आत्मा को तैयार किया। अब तैयार किया है तो जाना भी चाहिए, लेकिन तैयार करके आप क्या करते हैं? अगले साल तक घर में ही बैठते हैं और फिर अगले साल 10 दिन और तैयारी में लगते हैं, संयम लेना है, संयम लेना है। भावना ही केवल भाते हैं, संयम तो लेते नहीं है। प्रतिवर्ष 10 लक्षण के 10 दिन आते हैं और 10 दिन तक मुझे संयम लेना है, भगवान मुझे संयम लेना है, इसलिए अर्घ्य चढ़ा रहा हूँ, इसलिए पूजा कर रहा हूँ कहते हैं। 10 दिन पूरे हो गए तो भगवान लेना है सोचता हूँ कह करके एक साल उधर ही जाते, आते ही नहीं भगवान। हाँ बदलते हैं, पुण्य बंद होता है, शुभ में रहते हैं, भटकता नहीं, एकाग्र होता है, विशुद्धि बढ़ती है, पुण्याश्रय होता है, पुण्य बंद होता है, आत्मा का हित होता है, कर्म की थोड़ी बहुत निर्जरा भी हो जाती है विशुद्धि बढ़ने से, लेकिन उत्तम संयमी नहीं बनते आप। संयमी नहीं कहलाते, ये सब कुछ करके भी उत्तम संयमी नहीं है। जब तक मुनि महाराज नहीं बनेंगे तब तक उत्तम संयमी नहीं बन सकते। इतना तो इस साल समझ में आ गया कि संयमी कब बन सकते हैं, ये भी मालूम नहीं था कि संयमी हम कब कैसे बन सकते हैं, क्या करने से बन सकते हैं, यह भी पता नहीं था। अब पता तो लग गया, रास्ता पता लग गया, जाने से पहले, कहीं भी जाने से पहले उसका रास्ता पूरी तरह पता लगाना जरूरी है। आपको दिल्ली जाना है तो कौन सी रेलगाड़ी पकड़ना, कहाँ उतरना, कहाँ रुकता है वो, कहाँ चेंज करना, ये सब सोचते हैं क्या? नहीं, पहला पता लगा करके फिर बाद में रेल में बैठ जाते हैं। उसी प्रकार इस साल पता लग गया है दिल्ली तक का मार्ग, छठे गुणस्थान तक का। अब धीरे धीरे चलेंगे, अगले साल तक तैयारी करो। उत्तम संयम, इस संबंध में उत्तम संयम के बारे में थोड़ा सा हम सोचेंगे। उत्तम का अर्थ होता है अंतरंग परिग्रहों का त्याग और बहिरंग परिग्रहों का त्याग, दोनों का त्याग उत्तम संयम है। और यह उत्तम संयम भावलिंग और द्रव्यलिंग, बहिरंग परिग्रह त्याग करने से द्रव्यलिंग प्रकट होता है, अंतरंग परिग्रह त्याग करने से भावलिंग प्रकट होता है। अंतरंग परिग्रह क्या है? मिथ्यात्व और कषाय भाव। कितने प्रकार के कषाय भाव? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, 3 प्रकार के कषाय भावों का त्याग। और एक मिथ्यात्व का त्याग, इतना करेंगे तो वह संयम उत्तम संयम है। ऐसा नहीं करते हुए ऐसा भी हम कर सकते हैं, लेकिन उत्तम संयम की कोटि में आएगा नहीं। अंतरंग परिग्रह तीन कषाय, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरणी प्रत्याख्यानावरणी को तो हमने त्यागा नहीं, और एक मिथ्यात्व को त्याग दिया है। हमारा गुणस्थान कौन सा बनेगा? चौथा बनेगा। दस परिग्रह संपूर्ण त्याग किया, एक मिथ्यात्व का त्याग किया, तो हम चौथे गुणस्थान में आ गए। हम कौन हैं? श्रावक हैं कि दिगंबर मुनि हैं? श्रावक कैसे हैं? दस परिग्रह त्यागा है तो दिगंबर नहीं क्या? हाँ, दस परिग्रह त्यागा है, पूर्ण त्यागा है, तो द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिंग धारण कर चुके। अब यहां देखो, द्रव्यलिंगी मुनि के पास निर्ग्रंथता है, दस परिग्रह है ही नहीं, चेतन अचेतन परिग्रह से दूर हैं, लेकिन कषाय नहीं छोड़ी है। कौन कौन सी कषाय? अप्रत्याख्यानावरणी नहीं छोड़ी है, प्रत्याख्यानावरणी नहीं छोड़ी है, और सम्यक तो प्राप्त किया है, इसलिए अनंत अनुबंधी रह नहीं सकती और मिथ्या तो रह नहीं सकता। ये चार और वो एक पांच का त्याग किया है ना, इसलिए चतुर्थ गुणस्थान हुआ है। तो बहिरंग परिग्रह त्याग से युक्त मुनि, उनके पास भी तो संयम है। कौन सा संयम है? द्रव्य संयम, द्रव्य संयम है। भाव संयम है क्या? तो द्रव्य संयम को चतुर्थ गुणस्थान में रहने वाले उत्तम मुनि, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती मुनि के द्रव्य संयम को असंयम कहेंगे या उत्तम संयम कहेंगे? असंयम कहेंगे, क्योंकि चौथा गुणस्थान का नाम ही है असंयम गुणस्थान, अविरत गुणस्थान, अविरत सम्यक तो गुणस्थान। यहां अविरत नाम जो आ रहा है प्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय के कारण से अविरत नाम आया है, और बहिरंग संयम जो दस परिग्रह छोड़ने के कारण से प्रकट हुआ है, ये संयम की कोटि में आता ही नहीं, उसको भी असंयम कहा, द्रव्य संयम को भी असंयम कहा, भाव संयम के न होने से। ये कैसी बात हो गई? एक बार कहा था हमने प्रवचन में, याद होगा, नोट है, इधर भी छपा है, इधर भी छपा है, लेकिन वो सफेद जो रहता है ना, वहां पर ऐसे प्रकाश में पकड़ करके देखते हैं, अंदर रहता है वो कागज के अंदर छपा हुआ, क्या रहता है? महात्मा गांधी जी का चित्र रहता है, वो चित्र नहीं है और बाकी सब छपा है, जाली नोट हो गया ना, तो ये जाली संयम हो गया। अंतरंग में कषाय अगर त्याग नहीं है तो गांधी जी का सिक्का नहीं है उस पर, उस संयम पर। अंतरंग से कितनी कषाय जाना चाहिए? अनंतानुबंधी जाना चाहिए, अप्रत्याख्यानावरणी जाना चाहिए और प्रत्याख्यानावरणी जाना चाहिए, क्योंकि ये कषायें देखो क्या क्या काम करती है। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय संपूर्ण परिग्रह के चाह को उत्पन्न करती है, प्रत्याख्यानावरणी कषाय संपूर्ण परिग्रह के चाह को उत्पन्न तो नहीं करती, कुछ परिग्रह में आशा रखो कहती है, कुछ परिग्रह को त्यागो, सभी मत त्यागो ये कहती है, इसलिए वह कषाय भी असंयम के पोषक है और अप्रत्याख्यानावरणी कषाय भी असंयम का पोषक है। अब संयम का पोषक है तो एक देश संयम भले ही होता है, किंतु पूर्णतः संयम छोटा नहीं। अब वे मुनि महाराज पंचम गुण स्थान में आ सकते हैं कि नहीं, चौथे से पंचम में आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं। कैसे आएंगे? तो भावों से ही आना पड़ता है। कैसे आना पड़ता है? चौथे में गुण स्थान में रह करके संपूर्ण परिग्रह में आशा थी, किंतु उस परिग्रह में से एक देश परिग्रह का त्याग के परिणामों को धारण करने लगते हैं तो पंचम गुणस्थान हो जाएगा। बाहर से तो 10 परिग्रह त्याग है, लेकिन एक देश परिग्रह के त्याग के परिणाम हो गए, जीवन पर्यंत के लिए हो गए। मुझे एक देश ये परिग्रह नहीं चाहिए और जीवन पर्यंत नहीं चाहिए, ऐसे भी परिणाम हो गए तो पंचम गुणस्थान में आ जाएंगे, और ये भी परिणाम नहीं हुए तो चौथे गुणस्थान में रहेंगे। और सभी छोड़ने के भाव हो गए तो चौथे से डायरेक्ट छठे में आ सकते हैं, और छठे से पुनः चौथे में भी आ सकते हैं, छठे से चौथे में भी आ सकते हैं पंचम में गए बिना। तो कैसे आ सकते हैं? उतरते समय में भी वही परिणाम कारण बनते हैं जो चढ़ते वक्त परिणाम थे। छठे से पंचम में आना हो तो किस प्रकार के परिणाम चाहिए? मुझे एक देश परिग्रह आवश्यक है, और एक देश तो ग्रहण जीवन पर्यंत नहीं करूंगा, मैं पंचम गुणस्थान के आचरण को स्वीकार करता हुआ वहीं रहूंगा। इतना कहा, बाह्य परिग्रह भी धारण नहीं किया लेकिन इतना ही कहा, इन परिणामों के कारण से वो पंचम में आ सकते हैं। जीवन पर्यंत मुझे एक देश परिग्रह रखना है और एक देश त्याग करना है, ये जीवन पर्यंत करना है, ये परिणाम हो गए तो छठे से पंचम में आएंगे। छठे से चौथे में डायरेक्ट आ सकते हैं कि नहीं? डायरेक्ट भी आ सकते हैं। तो कैसे परिणाम उत्पन्न करना पड़ेगा वहां? तो चौथे के योग्य परिणाम होना चाहिए। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के उदय से जो परिणाम होते हैं वो होना चाहिए वहां। तो क्या होना चाहिए? मुझे सब प्रकार के परिग्रह चाहिए, किंतु मुझे मिथ्या तो नहीं चाहिए, सम्यक को तो धारण करूंगा, किंतु परिग्रह सभी आवश्यक है मुझे। इस प्रकार के परिणाम हो गए तो छठे में बचेंगे क्या? नहीं। किस गुणस्थान में डायरेक्ट आएंगे? चौथे गुणस्थान में आएंगे। छठे से पहले गुणस्थान में भी डायरेक्ट आ सकते हैं, हाँ, तो वहां कैसे आएंगे? वो ऐसे परिणाम कर लेते हैं, मुझे सम्यक तो भी नहीं चाहिए और परिग्रह भी सब चाहिए, मिथ्या तो भी करूंगा और परिग्रह भी रखूंगा, ये भाव हो गए तो छठे गुणस्थान से कहां आ सकते हैं? पहले गुणस्थान में आ सकते हैं, और पहले गुणस्थान से डायरेक्ट छठे में भी जा सकते हैं। क्या भाव करने से जाएंगे? सोचो, मुझे बहिरंग परिग्रह भी कुछ नहीं चाहिए और इनकी आशा भी मुझे जीवन पर्यंत के लिए नहीं है, और मुझे मिथ्यात्व भी नहीं करना है, ऐसे परिणाम होने लगे। और ऐसे परिणाम होने लगे तो वैसे ही आचरण में ला दिया तो किस गुणस्थान में चले गए? डायरेक्ट छठे गुणस्थान में चले गए। पहले से छठे में भी जा सकते, मार्ग है आने जाने के। नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं और ऊपर से नीचे नीचे भी आ सकते हैं। जीव का गुणधर्म नहीं है ये, जीव का दोष है। जीव मिथ्यात्व दोष को करता है, कषाय दोष को करता है। क्यों करता है? बहिरंग परिग्रहों में मूर्छित होकर के करता है। बहिरंग परिग्रहों में मूर्छा भाव होने से आने जाने के रास्ते बनते, छोड़ने से जाने के रास्ते बनते हैं ऊपर, और ग्रहण करने के भाव होने से नीचे के रास्ते निकलते हैं। उत्तम संयम क्या है? उत्तम संयम तो वही है, अंतरंग से कषाय भी छोड़ो जीवन पर्यंत के लिए। सुन रहे हैं ना? जीवन पर्यंत के लिए अंतरंग कषाय भी छोड़ो और मिथ्यात्व भी जीवन पर्यंत के लिए छोड़ो। ऐसा कर सकते हैं क्या? हम एक महीने के लिए मिथ्यात्व छोड़ेंगे और सम्यक दर्शन एक महीने के लिए प्राप्त हो, ये हो जाएगा? मिथ्यात्व भाव ही नहीं हटे तो सम्यक दर्शन क्या धारण कर पाएंगे? अभी करने के भाव बचे हैं अंदर, इसलिए तो ये भाव आ रहे हैं कि एक महीने के लिए छोड़ देता हूं, दो महीने के लिए छोड़ दे, एक साल के लिए छोड़ता हूं। तो सम्यक दर्शन भी एक व्रत है, इसको धारण करते समय में भी हमें आजीवन पर्यंत के ही भाव उत्पन्न होना चाहिए। काल मर्यादा से आप छोड़ेंगे तो सम्यक दर्शन मिलने वाला नहीं है, चौथा गुणस्थान नहीं बनेगा। क्योंकि मैं मिथ्यात्व छोड़ता हूं इस प्रकार के भावों के साथ, एक महीने के बाद ग्रहण करता हूं, ये भाव साथ ही चल रहे हैं, ये साथ ही चल रहे हैं ना। और वो कब तक साथ रहेंगे? मान लो एक साल के लिए छोड़ा है तो वो प्रतिदिन गिनता रहेगा, एक एक दिन, एक महीना हो गया, दो महीना हो गया, मुझे मिथ्या तो करना है ये मिथ्या तो के भाव साथ ही चलते हैं। हाँ, ऐसा ही भाव हो रहा है। कैसा? हाँ, ऐसा ही चल रहा है। तो कोरी भावना है ये, पूरी भावना नहीं है। कोरी भावना है, पूरी भावना नहीं है। पूरी भावना के लिए भी 10 दिन तक हमें निर्विकल्प रहना चाहिए, निर्विकल्प रहना चाहिए। तो भावना की निर्दोषता है। यहां हम भावना भा रहे हैं और हमारा मन पूरा परिग्रह में है, यहां नहीं है, तो भावना सफल होगी क्या? आत्मा के संस्कार आएंगे क्या? नहीं आएंगे। और मालूम नहीं होना चाहिए, ये असली भावना है, तही भाव रहेगा। 10 दिन कब खत्म हो गए मालूम ही नहीं चलना चाहिए, तब भावना की सफलता है। मालूम चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। कब खत्म होगा, 10वां दिन कब आएगा, उत्तम ब्रह्मचर्य कब आएगा, उसकी पूजा कब करें, और घर में भाई ऐसा हो रहा है क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो सभी चढ़ाने के चावल बेकार, बादाम बेकार, नारियल बेकार, टाइम बेकार, और प्रवचन सुनना भी बेकार। नहीं जाएगा? हाँ, प्रवचन सुनना बेकार नहीं हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि प्रवचन सुनते समय 1 घंटा कब निकला ये पता नहीं चलता, इसलिए सफल है। अगर प्रवचन में भी बैठे बैठे कब खत्म हो जाएगा 1 घंटा ये भावना आ गए तो ये भी विफल। लेकिन कम से कम 1 प्रवचन तो सफल है। देखो, दस लक्षण पर्व मनाने की विधि जो बताई है श्रावक को, ऐसी बताई है 10 दिन के लिए घर का त्याग करना चाहिए। घर 10 दिन के लिए घर त्याग करना चाहिए। ये यम में आएगा क्या नियम में आएगा? ये ये नियम में आएगा, ये उत्तम संयम नहीं है। ये उत्तम संयम की कोटि में नहीं आएगा। नियम पूर्वक जो कुछ भी किया जाता है वह संयम का अभ्यास ही है। पंचम गुणस्थान वाले भी एक देश पाप को जीवन पर्यंत त्याग कर चुके हैं, वहां पर भी यम है, लेकिन पाप बचा हुआ है इसलिए उत्तम संयम की कोटि में संयमा संयम नहीं आएगा। संयमा संयम में असंयम भी है और संयम भी है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, इसलिए उत्तम संयम वो नहीं है। उत्तम संयम तो संपूर्ण पंच पापों का आजीवन के लिए त्याग, विषयों का भी त्याग, विषय ने परिग्रह, परिग्रहों का भी त्याग, और परिग्रह के प्रति जो आशा भाव है आशा का भी त्याग, ये उत्तम संयम है। ऐसे उत्तम संयम के माध्यम से आत्मा का परम कल्याण होता है, इसकी भावना भाने से भी कर्म कटते हैं। उत्तम संयम की पूजा करने के लिए, उत्तम संयम की भावना भाने के लिए 3 गति के जीव आकर समोशरण में बैठ जाते हैं। देवगति से देव आते हैं, तिर्यंच गति से तिर्यंच आते हैं, और मनुष्य गति से श्रावक और श्राविकाएं आ जाती हैं, और उनमें प्रधान चक्रवर्ती भी आ जाता है, और तीर्थंकर दिगंबर होते हैं, वो यथाख्यात चारित्र वाले होते हैं, और नीचे सभा में बैठे हुए सभी मुनि महाराज, लाखों की संख्या में मुनि महाराज होते हैं, वे उत्तम संयम वाले कहलाते हैं, छठे सप्तम गुणस्थान वाले। भगवान 13वें गुणस्थान में रहते हैं, वो यथाख्यात संयमी, और मुनि महाराज सकल संयमी होते हैं, क्षायोपशम संयम इनके पास होता है, ये उत्तम संयमी, उत्तम संयम को धारण करने वाले। और इनकी और उनकी, तीर्थंकर भगवान की और इन संयमी मुनियों की पूजा करने के लिए कितने गति के जीव आए हुए हैं? 3 गति के जीव आए हैं। देव भी 10 धर्म की पूजा कर रहे हैं, तो ये 10 धर्म मुनियों के पास है, उनकी पूजा कर रहे हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये 10ों धर्म जहां हैं वहां पर रत्नत्रय होता ही है। रत्नत्रय अलग नहीं है और 10 धर्म अलग नहीं है। जहां 10 धर्म है वहां पर रत्नत्रय है, जहां रत्नत्रय है वहां 10 धर्म है। ये दोनों का संबंध अविनाभाव संबंध है। अगर रत्नत्रय नहीं तो 10 धर्म भी नहीं, और 10 धर्म नहीं तो रत्नत्रय भी नहीं। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। नोट इधर भी छपा हुआ है, इधर भी छपा हुआ है, और वहां अंदर गांधी का चित्र है। जहां गांधी का चित्र होता है ना, वहां पर अनंतानुबंधी अप्रत्यय के अनावरणी प्रत्यय के 3 कषाय होती है। अगर वहां 3 कषाय दिख गई तो ये नोट बेकार, और वहां पर खाली खाली दिखा तो ये नोट चलेगा। अगर वहां खाली है तो निश्चित रूप से वहां उत्तम संयम लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा देखना पड़ेगा उसको प्रकाश की ओर करके। कषाय है तो असंयम लिखा हुआ मिलेगा, 3 कषाय, और कषाय 3 कषाय नहीं है तो उत्तम संयम लिखा हुआ मिलेगा। तो वो नोट असली नोट है, उसको कहीं भी चला लो, तीन लोक में चलेगा। आप स्वर्ग जाएंगे तो आइए आइए पूजा करना है आपकी कहेंगे। त्रिरंच गति के त्रिरंचों के पास भी जाएंगे तो त्रिरंच प्राणी भी आपको देख करके नम्रीभूत हो जाएंगे, क्योंकि आप संयमी हैं, आप किसी के शत्रु नहीं हैं, तो आपका शत्रु कौन? त्रिरंच भी मित्र बनते हैं मुनि के। संयमी को देखकर उसके परिणाम ऑटोमेटिक बदल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन कषाय नहीं हैं, तो हमारे पास संयम है, संयम का प्रभाव उन पर जाता है। जैसे कहा जाता है ना, मोहिनी कर्म का उदय जब तक है तब तक उपसर्ग आदि होते हैं, और मोहिनी कर्म का उदय नहीं है तो उपसर्ग भी नहीं होते, उपसर्ग भी नहीं होते। इसका मतलब मोहिनी कर्म है तो उसका भी प्रभाव जाता है, नहीं है तो उसका प्रभाव भी जाता है। अरहंत भगवान के समोह शरण में उनके चरणों में बैठकर जीवों को एक दूसरे के प्रति अनुराग होता है, वैरत्व नहीं होता। ये किस कारण से, ये कौन कर रहा है? अरहंत भगवान मोहिनी कर्म से जो रहित हैं, उनका यथा क्या चारित्र का प्रभाव है, और उस कारण से परस्पर में मित्र बन करके बैठे हैं सभी। मोक्ष मार्ग में संयम का ही महत्व है। कैसा संयम? अंतरंग संयम, बहिरंग संयम, संयम का महत्व है। तो यहां पर संयम की परिभाषा दी गई है, संयम को प्रकट करने के लिए क्या क्या करें। तो यहां कहा है अपनी इंद्रियों और मन को वश में करना, और षट काय के जीवों की रक्षा करना, ये उत्तम संयम है। इसके दो अंग हैं, इंद्रिय विजयी बनना एक तरफ, ये होना चाहिए काम, और एक तरफ षटकायों की रक्षा करना, जीवों की, षटकाय जीवों की रक्षा करना। कैसे? षटकाय यानी कौन कौन? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, ये एकेंद्री जीव हैं। और त्रस कायिक, ये द्विंद्री, तीनेंद्री, चतुरेंद्री, पंचेंद्री, सौध्नी और असौध्नी, ये त्रस जीव हैं। त्रस इसमें, त्रस में चार प्रकार के, द्विंद्री, तीनेंद्री, चतुरेंद्री और पंचेंद्री, चार प्रकार के त्रस हैं, और पांच प्रकार के एकेंद्री जीव हैं, स्थावर हैं। स्थावर पांच प्रकार के, त्रस चार प्रकार के। मुनि महाराज को इनकी हिंसा का त्याग होता है, पृथ्वी पर चलते हैं तो प्रासुक पृथ्वी पर चलते हैं, ये पृथ्वी का एक जीव की हिंसा का त्याग है। प्रासुक पृथ्वी यानी जहां से लोग आते जाते हैं, प्रासुक है, गाड़ी मोटर चलते रहते हैं, वहीं से चलते हैं, तो एकेंद्री जीव का घात नहीं होगा। जल का एक, जो जल का उपयोग करेंगे वो प्रासुक हो तो ही ग्रहण करेंगे कमंडलों आदि में, अगर जीव सहित है तो उसको ग्रहण नहीं करते। आहार आदि में भी गर्म जल होता है, प्रासुक किया हुआ होता है, वो ठंडा हो या गर्म हो, किंतु उसमें जीव नहीं होना चाहिए, जल का एक जीव उसको ग्रहण करते हैं, ये जल का एक जीवों की हिंसा का त्याग है। वायु कायिक, अग्नि कायिक, अग्नि कायिक अग्नि को जलाते नहीं और बुझाते भी नहीं। आरती, महाराज आपके हाथ से उद्घाटन हो, हम नहीं कर सकते, अब बोलना भी गलत है। कोई कर रहे हैं, महाराज हम कर रहे हैं, आशीर्वाद दे दो, हम आरती जला रहे हैं, आशीर्वाद नहीं देंगे, क्योंकि जीव की हिंसा भी होगी और जीव उसमें उत्पन्न भी होंगे, मरेंगे भी, उसकी अनुमोदना नहीं करते वो। आप लोग बेधड़क आरती चलाते हैं, ये असंयम है। अग्निकायिक जीवों की हिंसा, पृथ्वीकायिक जीवों की हिंसा, वनस्पतिकायिक जीवों की हिंसा, वायुकायिक जीवों की हिंसा, पंखा चलाते हैं, वायुकायिक जीवों की हिंसा है, ये असंयम है। संयम क्या है? इनकी हिंसा का त्याग करके संयम धारण करना, ये अहिंसा मार्ग है। हाँ, त्रियंश गति में संयमी रहते हैं, कहाँ देखा है? हाँ, संयम में संयमी रहते हैं तो देश संयमी बन सकते हैं, वो देश संयमी बन सकते हैं, सकल संयमी नहीं बन सकते त्रियंश जीव। सकल संयमी तो मनुष्य ही बन सकता है। त्रियंश गति में गुणस्थान कितने हैं? पांच, सुना है ना, पांच ही गुणस्थान है। तो पांच गुणस्थान प्राप्त किए हुए त्रियंश, पांचवें गुणस्थान को प्राप्त किए हुए त्रियंश संयमी कहलाते हैं। कैसे संयमी? एक देश संयमी, सकल संयमी नहीं, सीमा संयमी कहो उसको, संयमी कहने की अपेक्षा सीमा संयमी त्रियंश पाए जाते हैं। कोई घोड़ा है, हाथी है, संगी पंचेंद्री जीव, ये सीमा संयम गुणस्थान को प्राप्त होने से सीमा संयमी कहला सकते हैं, संयमी नहीं कहेंगे। मिल गए ना उत्तर? यही है। तो यहां देखो, टाइम 2 मिनट और है। क्या त्यागना पड़ता है? षटकायिक जीवों की हिंसा का त्याग, ये संयम है। ये किसके जीवन में आ सकता है? मुनि के जीवन में। और पंचम गुणस्थान वर्ती के पास षटकायिक में से किसका त्याग है? त्रस का त्याग है या स्थावर का भी त्याग है? केवल त्रस का ही त्याग है, स्थावर का त्याग है ही नहीं। आप स्थावर का त्याग करेंगे तो खाना बनाकर खा ही नहीं सकते, और खाना बनाते समय षटकायिक जीवों की हिंसा होती ही है। पंच स्थावर कायिक जीवों की हिंसा तो नियम से होती है, भले ही त्रस कायिक जीवों की रक्षा करके आप भोजन तैयार कर सकते हैं, पानी छान करके जीवाणु छोड़ करके, त्रस जीव हैं वो जल में, उन त्रस जीवों को अलग करके छोड़ दिया और भोजन तैयार किया, उसकी रक्षा तो हो गई, इसका नाम पंचम गुणस्थान। त्रस का त्याग किया है इसलिए पंचम गुणस्थान, त्रस जीवों की हिंसा का त्याग किया है इसलिए पंचम गुणस्थान। परंतु पांच स्थावर कायिक को बचाएंगे कैसे आप? जल को छान कर क्या किया आपने? हैं? गरम किया ना, तो गरम करने से कौन से जीव की हिंसा हो गई? जल कायिक जीव की हिंसा हो गई, तो ये असंयम है। जल कायिक असंयम, अग्नि को जलाएंगे अग्निकायिक असंयम, वायुकायिक भी रहते हैं वहां वो भी जल जाते हैं, वायुकायिक असंयम, और वनस्पति, वनस्पति से तो भोजन बनता है वो वनस्पति कायिक जीव हिंसा असंयम है। हाँ, सब्जी फल वगैरह जिसमें जीव होते हैं वो, और कौन सा बच गया? पृथ्वी कायिक। पृथ्वी कायिक हिंसा कैसी है? मकान बांधते समय और सिगड़ी जलाते हैं तो जमीन पर रख करके जलाते हैं तो वो जल जाते हैं, पृथ्वी का एक सोना, सोना तो खदान में निकाल करके लाते हैं, सोना तो प्रासुक है, आपके हाथ में जो सोना आता है ये जीव रहित है। जीव सहित कब था? खदान में जब था तब जीव सहित था, पहनते हैं इसलिए अनुमोदना तो होती है, ठीक है, हिंसा करो ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन पहन तो रहे हैं। हाँ क्या सुनाई नहीं दे रहा है? आगे आओ, ऊपर की आवाज आ रही है। हाँ पूछो।
नमस्ते महाराज, नमस्ते नमस्ते। संस्कृत में एक श्लोक है,
पास में पकड़ो।
संस्कृत में एक श्लोक है, खंडनी पेशनी चुल्ली उदक कुंभ प्रमार्जनी पंचसूना गृहस्थस्य तेन मोक्षम न गच्छति। पानी भरना, खंडनी कांडना, पेशनी साफ साफ करना,
ठीक ठीक ठीक,
ये सब जो है इसके वजह से वो मोक्ष को नहीं जा सकता है, ये सब त्याग करना पड़ता है, ऐसा ही श्लोक का अर्थ है।
हाँ श्लोक का अर्थ ऐसा ही है, सोना पंच सोना का त्याग के बिना संयम प्राप्त नहीं होता, और संयम प्राप्त हुए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। देखो एक बात ध्यान रखो, संयम कर्मों के संवर के लिए कारण है। क्या बताया? संयम कर्मों का संवर कराता है और तप कर्मों की निर्जरा कराता है। आज संयम की बात है, कल तप की बात होगी, कल तप की बात, आज संयम की बात। पहला संवर करना पड़ेगा, निर्जरा तो बाद में होगी। संवर पूर्वक कर्मों की निर्जरा होती है तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। निर्जरा के बिना मोक्ष नहीं है। संवर करना हो तो क्या स्वीकार करना? संयम धारण करना। और निर्जरा करना हो तो क्या स्वीकार करना? तप को स्वीकार करना। तप 12 प्रकार का है, अंतरंग तप 6 प्रकार का, बहिरंग तप 6 प्रकार का। तप करने से कैसी कर्म की निर्जरा होती है ये कल बात करेंगे। संयम के संबंध में इतना ही पर्याप्त है, पूरा टाइम हो गया।
जिनवानी करना है।
पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को दो दी, अतः कहा दी जिनवानी। जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर मरो मां अब तक हम विषयांद रहे, अब ना हम विषयांद रहे।
जय बोलो अजितनाथ भगवान की जय। जय बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय। जय बोलो नियम सागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो ऋषभ सागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलो सुपार्श सागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। जिरगे साहब,
सर्वांना एक निवेदन आहे, आज रात्री 8 वाजता मुनि निवासची मीटिंग होणार आहे, सर्वांनी इथं उपस्थित राहायचं आहे। सर्व महिलांनी आणि श्रावक श्राविका सर्वांचीच मीटिंग आहे। जय जयनेंद्र।